بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤ، صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی تلاوت ایوم اس کے انواع سے کریں گے۔ آج آپ پوتر قرآن مجید کے سورہ حجرات کی 12ویں اور 13ویں آیتوں کی تلاوت اور انواع سنیں گے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتین کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے ایمان لانے والو، بہت سی سوچوں سے بچو کہ کچھ سوچیں پاپ ہوتی ہیں، اور ٹوہ میں مت رہو، اور نہ تم میں سے کوئی پیٹھ پیچھے کسی کی نندا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا ماس کھائے؟ تمہیں سوئم اس بات سے گھن آئے گی، اور ایشور سے ڈرتے رہو، نسندیہ ایشور توبہ سویکار کرنے والا اور دیاوان ہے۔ ہے لوگو، ہم نے تمہیں ایک پرش و استری سے پیدا کیا، اور تمہاری بہت سی جاتیاں اور ونش بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ निसंदेह ईश्वर की दृष्टि में तुम्हारे बीच सबसे अधिक प्रतिष्ठित वो है जो ईश्वर से सबसे अधिक भय रखता है। निसंदेह ईश्वर अत्यंत ज्ञानी और जानकार है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे प्रसारण को आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9510 किलो हर्ट्ज पर सुन रहे हैं। आज रविवार है, अप्रैल की 18, रमजान की 5 और फरवरी माह की 29 तारीख। कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार है। पहले विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। विश्व समाचारों के बाद कार्यक्रम अनमोल बातें आप सुनेंगे। अनमोल बातों के उपरांत राजनैतिक चर्चा की जाएगी, जिसके पश्चात आप हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम सुनेंगे, कुरान ईश्वरीय चमत्कार, और सभा के अंत में हम आपको रमजान के संबंध में विशेष कार्यक्रम सुनवाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारे इन कार्यक्रमों को आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, parstoday.com/hi। और अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान के राष्ट्रपति रोहानी ने सहप्रिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार पर बल दिया है। ईरान के मुख्य परमाणु वार्ताकार का कहना है कि वियना में बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। नतंस परमाणु केंद्र में आतंकवादी कार्रवाई को अंजाम देने वाले तत्व की पहचान हो गई है। राहुल गांधी ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में अपनी सभी चुनावी रैलियां रद्द कर दी हैं। दूसरे नेताओं से भी ऐसा करने की अपील की है। और अब आप गायम रिजवी और मरियम मेरदादी से विस्तार से समाचार सुनिए।
राष्ट्रपति रूहानी ने सर्बिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार पर बल दिया है। हसन रूहानी ने रविवार को तेहरान में सर्बिया के विदेश मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ईरान सदैव ही सर्बिया की राष्ट्रीय एकता का समर्थन करता रहा है। हसन रूहानी ने तेहरान और बेलग्राड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के वरिष्ठ वार्ताकार व उप विदेश मंत्री अब्बास इराकची ने वियना में JCPOA आयोग की शनिवार को बैठक के बाद अपने ट्वीट में कहा है कि कई दिनों की सघन बातचीत के बाद ऐसा लगता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आगे का रास्ता कठिन है। उन्होंने आगे कहा कि अभी किसी नतीजे का अंदाजा लगाना जल्दबाजी होगी। एक्सपर्ट ग्रुप अहम विषयों को स्पष्ट करने का अपना काम जारी रखेंगे। ईरान के उप विदेश मंत्री ने शनिवार की शाम एक बयान में इस बात का जिक्र करते हुए कि नई सहमति बनती नजर आ रही है कहा, बातचीत अब ऐसे चरण में पहुंच गई है कि सभी पक्ष एक टेक्स्ट पर काम शुरू कर सकते हैं। ईरानी पक्ष ने अपने मद्देनजर टेक्स्ट तैयार करके सभी पक्षों को पेश किया है।
अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने परमाणु समझौते से अमरीका के एक पक्षीय रूप से निकलने का जिक्र करते हुए वाशिंगटन से पहले इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते में वापस लौटने की मांग की है। सेनेटर मर्फी ने ट्वीट में कहा है कि चूंकि अमेरिका ने ईरान के साथ परमाणु समझौते को छोड़ा है, इसलिए नैतिकता का तकाजा यह है कि पहले वाशिंगटन ही JCPO में वापस आए।
हाल ही में नतन्स में स्थित ईरान के परमाणु केंद्र में हुई विध्वंसकारी घटना को अंजाम देने वाले तत्व की तस्वीर सार्वजनिक की गई है। ईरान की खुफिया एजेंसी के एक विभाग इमाम जमान के गुमनाम योद्धा ने इस हमले को अंजाम देने वाले तत्व रजा करीमी की पहचान की है। हालांकि रजा करीमी इस विध्वंसकारी घटना के ठीक पहले ईरान से भाग गया था। इसराइल के इशारे पर परमाणु आतंकवादी कार्रवाई को अंजाम देने वाले इस तत्व की गिरफ्तारी और ईरान वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
ईरान में आज सैन्य दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सैन्य परेड में ईरानी सशस्त्र सेना के आधुनिकतम मिसाइल रक्षा तंत्र का अनावरण किया गया। इस सैन्य परेड के दौरान स्थानीय मिसाइल रक्षा तंत्र सयाद-3 और 4, मिर्साद मिसाइल रक्षा तंत्र, तलाश रक्षा तंत्र और S-200 और S-300 मिसाइल तंत्र का अनावरण किया गया। ये सैन्य परेड कोरोना वायरस के फैलाव के मद्देनजर स्वास्थ्य नियमों के पालन के साथ जारी थी, जिसमें सैन्य व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।
18 अप्रैल 1988 को अमेरिका ने ईरान के 3 ऑयल प्लेटफॉर्म पर बमबारी की थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। एडमिरल तंगसिरी ने कहा है कि देश की संप्रभुता की सुरक्षा के लिए हम शत्रु के खिलाफ त्वरित और ऐसी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं जिस पर उसको पछताना पड़ेगा। एडमिरल तंगसिरी ने रविवार को अमेरिका की ओर से फारस की खाड़ी में सन 1988 में ईरान के ऑयल प्लेटफॉर्म पर कायरतापूर्ण हमले की वर्षगांठ पर कहा कि वर्तमान समय में IRGC के स्वाभिमानी एवं बलिदानी नौसैनिक देश की सुरक्षा के लिए हर प्रकार से तैयार हैं।
ईरान इराक संयुक्त चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के महासचिव ने इराक में ईरानी संपत्ति की वापसी की पुष्टि की है। हमीद हुसैनी ने इरना से बात करते हुए कहा है कि इराक ने इस देश में ईरानी संपत्ति को स्वतंत्र करने के बाद में अनुमति हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों के बावजूद बगदाद ईरान को अपना कर्ज चुका सकता है। ईरान इराक संयुक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव ने बताया है कि इराक की केंद्रीय बैंक से ईरानी प्रतिनिधि की बात हो चुकी है। बैंक की ओर से ऐलान किया गया है कि अब ईरानी व्यापारी इराक में ब्लॉक पैसे से व्यापार कर सकते हैं।
ईरान और सऊदी अरब के अधिकारियों ने द्विपक्षीय मुद्दों के समाधान के लिए सीधी वार्ता की है। आलम ने फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से लिखा है कि इराक की राजधानी बगदाद में ईरान और सऊदी अरब के अधिकारियों ने दोनों देशों के संबंधों में सुधार के लिए सीधी वार्ता की है। दोनों देशों के बीच लगभग पिछले 5 साल से कूटनीतिक संबंध नहीं हैं और यमन युद्ध तथा क्षेत्रीय देशों के आंतरिक मामलों में रियाज के हस्तक्षेप को लेकर ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। इराक की प्रधानमंत्री अल काजमी ने सऊदी किंग सलमान के निमंत्रण पर पिछले महीने रियाज का दौरा किया था, जहां इस वार्ता का खाका तैयार किया गया था।
भारत में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते केसेस को देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सभी रैलियों के प्रोग्राम को रद्द कर दिया है। राहुल गांधी ने बाकी नेताओं से भी इस ओर सोचने की अपील की है। राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत वे पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली नहीं करेंगे, जहां विधानसभा चुनाव चल रहा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा है कि कोरोना वायरस की स्थिति के दृष्टिगत मैं पश्चिम बंगाल में सारी सार्वजनिक रैलियां रद्द कर रहा हूं। मैं सभी नेताओं को सलाह देता हूं कि वे मौजूदा स्थिति में बड़ी सार्वजनिक रैलियां करने के नतीजे के बारे में गहराई से सोचें।
भारत में फेक न्यूज के मामले में टेलीकॉम रेगुलेटर सूचना प्रसारण मंत्रालय को चेतावनी देते आ रहे हैं। इस दौरान द गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कुछ समय पहले फेसबुक ने भारत में फर्जी अकाउंट को हटाने की एक योजना बनाई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का नाम आने के बाद कंपनी इस कदम से पीछे हट गई। फेसबुक के एक कर्मचारी कुछ फेक अकाउंट बंद करने की तैयारी कर रहे थे, इसी बीच एक अकाउंटेंट के कारण उन्होंने अपना काम बंद कर दिया। उन्होंने फेसबुक की टास्क मैनेजमेंट सिस्टम को मेल करके पूछा था कि गवर्नमेंट पार्टनर और हाई प्रायोरिटी वाले इंडियन अकाउंट पर क्या कार्रवाई की जा सकती है या नहीं। हालांकि इस पर उनको कोई जवाब नहीं मिला।
भारत चीन के बीच लद्दाख स्थित LAC अर्थात वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव अभी भी जारी है। चीन कुछ दिनों पहले ही पेंगोंग सो छोड़ने के बाद एलएसी पर टकराव वाली दूसरी जगहों को भी चरणबद्ध तरीके से छोड़ने का वादा करने के बाद अब हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा के इलाके से पीछे हटने से मुकर गया है। आपको बता दें कि करीब 15 दिन बाद ही भारत और चीन के बीच लद्दाख में शुरू हुए तनाव को एक साल पूरा हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अब तक विवाद सुलझाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है।
ज़हनी शासन की सेना आए दिन लेबनान की सीमा का उल्लंघन करती रहती है। इसी उल्लंघन के ताजा क्रम में उसने लेबनान की समुद्र सीमा का उल्लंघन किया। इरना के अनुसार लेबनानी सैन्य कमान ने एक बयान में बताया कि ज़हनी नौसेना की 4 जंगी नौकाएं रासून नाकोरा के सामने लेबनानी जल क्षेत्र में दाखिल हुईं। लेबनानी सैन्य कमान ने बल दिया कि वो इस विषय पर लेबनान में तैनात यूएन फोर्स के समन्वय से आगे की कार्रवाई करेगी।
रूस यूक्रेन के बीच तनाव जारी है। इसी क्रम में यूक्रेन के एक अधिकारी ने रूस के खिलाफ एटम बम से लैस होने की संभावना जताई है। जर्मनी में यूक्रेन के राजदूत ने जर्मनी रेडियो से इंटरव्यू में कहा है कि मुमकिन है नेटो में शामिल न किए जाने पर कीव रूस का मुकाबला करने के लिए परमाणु हथियार बनाए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन या तो नेटो का हिस्सा हो या फिर उसके पास एक ही रास्ता बचता है और वो परमाणु हथियार सहित अपने हथियारों को ताकतवर बनाने का एक रास्ता है। इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
अनमोल बातें।
दोस्तों, कार्यक्रम अनमोल बातें में आपका स्वागत है। मोहम्मद मेहंदी का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम कार्य व प्रयास के बारे में चर्चा करेंगे। आशा है हमेशा की भांति हमारा आज का प्रयास भी आपको पसंद आएगा। जो इंसान परिश्रम करता है और परिश्रम से अपनी आजीविका कमाता है और उससे अपना, अपने बच्चों और परिजनों का खर्च लाता है, तो ऐसे व्यक्ति की इस्लाम बहुत प्रशंसा करता है और समाज के लोग ऐसे परिश्रमी इंसान को इज्जत की नज़र से देखते हैं। पैगम्बर इस्लाम की हदीस है कि हलाल आजीविका कमाना हर मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। इस हदीस से ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अवैध तरीके से आजीविका कमाना न केवल सही नहीं है बल्कि अवैध व हराम है। आज समाज में बहुत सी बुराइयां प्रचलित हैं, उसकी एक वजह लोगों का हराम खाना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसा तो कमाते हैं पर हराम हलाल का बिल्कुल ध्यान नहीं देते और उसका एक परिणाम ये होता है कि जो लोग अवैध ढंग से कमाए गए धन से खाना खाते हैं उन पर अच्छी बातें असर नहीं करती हैं। नसीहत करने वाला ईश्वरीय दूत ही क्यों न हो। मिसाल के तौर पर जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की राक्षसी सेना को उपदेश दिया तो उस पर कोई भी असर नहीं हुआ तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे पेट हराम से भरे हैं। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि कुछ गुनाह नमाज और सदका देने से भी माफ नहीं किए जाएंगे। तो पैगंबर इस्लाम से पूछा गया कि हे ईश्वरीय दूत, तो फिर क्या चीज गुनाहों के माफ किए जाने का कारण है? इसके जवाब में आपने फरमाया कि हलाल रोजी प्राप्त करने के लिए गंभीर रूप से प्रयास करना। इसी प्रकार उन्होंने एक अन्य स्थान पर फरमाया है कि उपासना के 10 भाग हैं, उसके 9 भाग हलाल आजीविका प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है। काम करने के बारे में हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि काम करो और उसे अंत तक पहुँचाओ और उसे निरंतर जारी रखो, धैर्य करो और सदाचारी रहो। इसी प्रकार आप एक अन्य स्थान पर फरमाते हैं कि जो थोड़ा कार्य जारी रहे वो उस काम से अधिक आशाजनक है जिससे तुम थक जाओ और जब भी तुम किसी काम से डरो
तो उसी में कूद पड़ो, क्योंकि उस कार्य से अधिक हानिकारक वो भय है जो उसे अंजाम देने से रोक रहा है। और ईश्वर की उपासना हासिल नहीं हो सकती मगर ये कि हलाल आजीविका के लिए कठिन परिश्रम किया जाए और अपना समय उस चीज में बिताओ जिसकी तुम्हें जरूरत है और उस चीज में अपना समय व्यतीत न करो जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है। ऐसा बहुत होता है कि लोग उस चीज व कार्य में अपना घंटों का मूल्यवान समय बिता देते हैं जिससे उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। काम करने में इंसान को हिम्मत व धैर्य से काम लेना चाहिए। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर इंसान का मूल्य उसकी हिम्मत के अनुसार होता है। हिम्मत बहुत मूल्यवान चीज होती है। इंसान की बहुत सी सफलता या विफलता का संबंध उसकी हिम्मत से होता है। मिसाल के तौर पर इस्लाम की पहली जंग जंगे बद्र को देख लीजिए। इस जंग में मुसलमानों की संख्या 300 से कुछ अधिक थी जबकि काफिरों की संख्या 1000 से अधिक थी और उस असमान युद्ध में विजय मुसलमानों को मिली। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही थी कि संख्या कम होने के बावजूद मुसलमानों के मनोबल बहुत ऊंचे थे। यही नहीं, इस युद्ध में मुसलमानों ने कुछ काफिरों को बंदी भी बना लिया। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बड़ापन ऊंचे मनोबल का नतीजा है, यानी जिस इंसान की मानसिकता तुच्छ होगी वो कभी बड़ापन नहीं दिखा सकता। इसी प्रकार हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान की निश्चेतना के लिए यही काफी है कि वो उस चीज में अपना समय गुजारता है जो उसके काम नहीं आएगी। और जब किसी चीज को पाना चाहते हो तो मनोबल ऊंचा रखो और जब उसे प्राप्त कर लो तो बड़ापन दिखाओ। इसी तरह हजरत अली अलैहिस्सलाम एक अन्य स्थान पर फरमाते हैं कि आलस कामयाबी की सबसे बड़ी मुसीबत है, यानी कामयाबी के मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट आलस है। जो इंसान आलसी होता है वो लोक परलोक दोनों में घाटा उठाएगा। आलसी इंसान आलस की वजह से चाहकर भी बड़े उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकता। दूसरे शब्दों में आलस सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है और आलस और सफलता एक साथ एक स्थान पर जमा नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दें, खुदा हाफिज।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। वियना में परमाणु समझौते के संयुक्त आयोग की बैठक के बाद ईरान के उप विदेश मंत्री और वार्ताकार टीम के अध्यक्ष सैयद अब्बास इराकची ने कहा कि प्रतीत यह हो रहा है कि नई सहमति बन रही है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि वो किसी प्रकार वार्ता के लंबा होने के इच्छुक नहीं है। लगभग 2 साल से कोरोना का कहर जारी है और सीमितताओं की वजह से मलेशिया के लोगों के सामूहिक रूप से आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों पर भी असर पड़ा है। परंतु 27 करोड़ की जनसंख्या वाले इस इस्लामी देश के लोग हाथों में चिराग लेकर रमजान के पवित्र महीने में भिन्न भिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि विकास के जो भी कार्य हैं उन्हें तुरंत आरंभ और पूरा किया जाना चाहिए। मनोज सिन्हा के प्रवक्ता ने कहा कि कश्मीर के संबंध में जो भी वादे किए गए हैं यथासंभव उन्हें पूरा करने की कोशिश की जाएगी।
रिव्यू मीटिंग तो हमारा मामूल का काम होता है कि हम जायजा लेते हैं कि अगर हमें खर्चा करना।
ये थे हमारी आज की चर्चा के विषय। वियना में परमाणु समझौते के संयुक्त आयोग की बैठक के बाद ईरान के उप विदेश मंत्री और वार्ताकार टीम के अध्यक्ष सैयद अब्बास इराकची ने कहा है कि प्रतीत यह हो रहा है कि नई सहमति बन रही है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि वो किसी प्रकार वार्ता के लंबा होने के इच्छुक नहीं हैं और कम से कम जिस चीज पर सहमति बनी है उसे लिखने का समय आ गया है। साथ ही कायम रिज़वी।
वियना में परमाणु समझौते के संयुक्त आयोग की बैठक के बाद ईरान के उप विदेश मंत्री और वार्ताकार टीम के अध्यक्ष सैयद अब्बास इराकची ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि नई सहमति बन रही है। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि वो किसी प्रकार वार्ता के लंबा होने के इच्छुक नहीं है। उन्होंने कहा कि कम से कम जिस चीज पर सहमति बनी है उसे लिखने का अब समय आ गया है। ऐसा लग रहा है कि परमाणु समझौते के संयुक्त आयोग की कई दौर की बातचीत और अमेरिका के अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों को खत्म कराने के संबंध में होने वाली वार्ता के बाद किसी सीमा तक भविष्य का रास्ता स्पष्ट हो गया है। इसके बावजूद अमेरिका ईरान से विशिष्टता लेने की चेष्टा में है और वो ये सोच रहा है कि अगर ईरान को विशिष्टता भी देनी पड़े तो कम से कम विशिष्टता दी जाए। पश्चिमी संचार माध्यम अमेरिका के अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों के बारे में कई प्रकार की बातें कह रहे हैं, जैसे कि प्रतिबंध खत्म किए जा सकते हैं या खत्म नहीं किए जा सकते या उनके संबंध में वार्ता की जा सकती है। साथ ही वे अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बल देकर कह रहे हैं कि प्रतिबंधों के खत्म किए जाने के बारे में ईरान से सहमति की जा सकती है, परंतु अमेरिका समस्त प्रतिबंधों को समाप्त करने का इरादा नहीं रखता। इन संचार माध्यमों के अनुसार अमेरिका जिन प्रतिबंधों को खत्म करना चाहता है उन प्रतिबंधों को ईरान से विशिष्टता लेने के बाद ही खत्म करेगा। वाशिंगटन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने समस्त प्रतिबंधों को समाप्त करने पर आग्रह जारी रखा तो वार्ता बंद गली में पहुंच सकती है, जबकि ईरान अब भी अपने तार्किक दृष्टिकोण पर बल दे रहा है। ईरान का मानना है कि प्रतिबंधों का विभाजन करना कि कुछ प्रतिबंध खत्म किए जा सकते हैं जबकि कुछ को नहीं, तो ये बात स्वीकार्य नहीं है। इसी तरह तेहरान का ये भी मानना है कि समस्त प्रतिबंधों को एक साथ समाप्त होना चाहिए और उसके बाद वो प्रतिबंधों की समाप्ति का सत्यापन करने के बाद ही परमाणु समझौते में अपनी उन प्रतिबद्धताओं पर अमल करना आरंभ करेगा जिन पर अमल को उसने रोक दिया है। बहरहाल इस्लामी गणतंत्र ईरान समस्त प्रतिबंधों की समाप्ति को वियना वार्ता को सफल बनाने का एकमात्र मार्ग समझता है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
लगभग दो साल से कोरोना का कहर जारी है और सीमाओं की वजह से मलेशिया के लोगों के सामूहिक रूप से आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों पर भी असर पड़ा है, परंतु 27 करोड़ की जनसंख्या वाले इस इस्लामी देश के लोग हाथों में चिराग लेकर रमजान के पवित्र महीने में भिन्न भिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस्माइलपुर हाजी की रिपोर्ट पेश करें साथ ही मोहम्मद अली कौमी।
लगभग दो साल से कोरोना का कहर जारी है और सीमितताओं की वजह से मलेशिया के लोगों के सामूहिक रूप से आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों पर असर पड़ा है, परंतु 27 करोड़ की आबादी वाले इस इस्लामी देश के लोग हाथों में चिराग लेकर पवित्र रमजान महीने में भिन्न भिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उनमें से एक पारंपरिक प्रथा यह है कि मलेशिया के लोग नदियों और सोतों में नहाकर शरीर और आत्मा को पवित्र करके पवित्र रमजान महीने का स्वागत करते हैं। नहाने की परंपरा पूरी होने के बाद बांस के पत्तों और टुकड़ों में चावल पकाने और उसे माता पिता की सेवा में पेश करके उनसे और बड़ों से क्षमा मांगने की परंपरा शुरू होती है। मलेशिया के मुसलमानों में बिरलान नामक एक अन्य प्रथा प्रचलित है। इस प्रथा के मुताबिक 12 मर्द कुर्बानी किए हुए मांस और ताज़ा सब्जी से विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजन तैयार करते हैं और उसके बाद गरीबों और निर्धनों में इस पारंपरिक व्यंजन को बांटते हैं। इसी तरह मलेशिया के लोग निदेरान परंपरा को आयोजित करके कब्रों पर जाते और मृतकों के लिए नमाज पढ़ते और दुआ करते हैं।
बड़ों से क्षमा याचना करने के बाद परलोक सिधार जाने वालों के कब्रों पर आए हैं और उनके लिए ईश्वर से दुआ कर रहे हैं।
मलेशिया के मुसलमानों के बीच एक सुंदर व अच्छी परंपरा यह है कि मस्जिदों आदि की सफाई सुथराई करके पवित्र कुरान की तिलावत और दुआ करके आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न कर देते हैं। पवित्र रमजान के अवसर पर धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए हमने मस्जिदों को साफ सुथरा करके तैयार कर दिया है। रमजान महीने के बाजारों को लगाना, फकीरों की सहायता करना और सामाजिक दूरी को ध्यान में रखकर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ना वे कार्य हैं जिसे मलेशिया के मुसलमान रमजान के पवित्र महीने में अंजाम दे रहे हैं। मलेशिया में क्वारंटीन की अवधि में 2 सप्ताह की वृद्धि हो जाने के बावजूद धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन जारी है और गाइडलाइनों को ध्यान में रखकर रेस्तरां और खाना पहुंचाने वाली गाड़ियों को शाम की अजान से लेकर सुबह की अजान तक रोजेदारों को सेवाएं प्रदान करने की इजाजत मिली है। कुआलालंपुर से इस्माइल पुर हाजी की रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि विकास के जो भी कार्य हैं उन्हें तुरंत आरंभ और पूरा किया जाना चाहिए। मनोज सिन्हा के प्रवक्ता ने कहा कि कश्मीर के संबंध में जो भी वादे किए गए हैं यथासंभव उन्हें पूरा करने की कोशिश की जाएगी। इसी बीच भारत नियंत्रित कश्मीर में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और 1500 के निकट व्यक्तियों को पॉजिटिव पाया गया है। पूरी जानकारी के साथ श्रीनगर से सिप्ते मोहम्मद हसन।
जम्मू कश्मीर यूटी में एडमिनिस्ट्रेशन में काफी फेरबदल कर दिया गया है और जो ऑफिसर्स पिछले 2 वर्षों से अपने पदों पर थे उन्हें अब तब्दील कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीरी जनता के हित को समझकर ऐसा किया गया और हम चाहते हैं कि कश्मीर में जितने भी तमीर तरक्की के काम हैं वो फौरी तौर पर आरंभ कर दिए जाए और उनको मुकम्मल किया जाए। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रवक्ता ने कहा कि वर्ष 2021 में उन तमाम कार्यों को पूरा किया जाएगा और उन लक्ष्यों को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा जो जम्मू कश्मीर यूटी ने रखे हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में मौजूदा प्रशासन ने जितने भी वादे जम्मू कश्मीर के लिए किए हैं उन्हें हर संभव प्रयास करके पूरा किया जाएगा। इस बीच जम्मू कश्मीर में कोविड की स्थिति इंतहाई अबतर से अबतर होती जा रही है और पिछले 24 घंटों के दौरान 1500 के निकट लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन का कहना है कि लोगों से हम ये आह्वान करते हैं कि वो उन नियमों का पालन करें जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने उनके लिए दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को चाहिए कि वो ऐसे ही घरों से बाहर ना आएं और जब जरूरी काम हो तब वो सड़कों पर आएं। उन्होंने कहा कि तमाम चीज़ों का ख्याल रखकर ही उन्हें चाहिए कि आप आगे आएँ। उन्होंने कहा कि मास्क के बिना अगर किसी नागरिक को पाया गया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है। इस बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन में किसान कार्य को बड़े अहसन तरीके से अंजाम देने के लिए एक सभा आयोजित हुई जहां डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करना जम्मू कश्मीर यूटी का काम है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से बहुत सारी योजनाएं हैं जिन्हें किसानों तक पहुंचाया गया है।
तो आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंचर करने की ताकि जो हमारे फंड्स होते हैं बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की और यहाँ यूटी सरकार की, इसका जो फ़ायदा है इसको आम ज़मींदार चक जो फार्मर है मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है उस तक फायदा पहुँचे। तो इस चीज़ का हमारा ہمیشہ ذہن میں رہتا ہے کہ یہ پیسہ صحیح طریقے سے خرچ ہو اور اسی افسر کو ہم انکوریج کریں گے، ایون ریوارڈ دیں گے۔
جموں کشمیر میں رمضان کے پوتر مہینے کو لے کر اگرچہ پرشاسن کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے تمام تر انتظامات کیے ہیں، پرنتو لوگ اس سے کافی ناراض ہیں اور وہ پرشاسن سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں تمام تر سہولتیں دی جائے۔ سبت محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔ شوتو، ہماری سبھا کے انت میں آپ سنیں گے رمضان کے سمبندھ میں وشیش کاریکرم، پر اس سے پہلے ساپتاہک کاریکرم سنیے، قرآن ایشوریہ چمتکار۔
قرآن ایشوریہ چمتکار۔
شروتاؤں، کارکرم قرآن ایشوریہ چمتکار کی ایک انیک کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں، آشا ہے پسند کریں گے۔ آئیے پہلے سورہ اسراء کی آیت نمبر 78 کی تلاوت سنیں۔
اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا۔
سورج ڈھلنے سے لے کر رات کا اندھکار پھیلنے تک نماز پڑھو، اور بھور سمے کی نماز بھی پڑھو کہ فجر کی نماز کی گواہی دی جائے گی۔
یہ آیت جس میں پرتی دن پڑھی جانے والی نمازوں کے سمے کی اور سنکیت کیا گیا ہے، کہتی ہے کہ دوپہر میں سورج کے پشچم کی اور ڈھلنے کے بعد سے ظہر کی نماز کا سمے آرمب ہوتا ہے، یہ سمے رات تک جاری رہتا ہے اور اس میں عصر کی نماز کا سمے بھی شامل ہوتا ہے۔ آگے چل کر آیت رات کے اندھکار ارتھات آدھی رات کو نماز کی سماپتی کا سمے بتاتی ہے، ارتھات جب ہر اور رات کا اندھکار چھا جائے اور اندھیرا سب سے ادھک ہو تو وہ آدھی رات کا سمے ہوتا ہے، اس سے پہلے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لی جانی چاہیے۔
آرمبھک چار نمازوں ارتھات ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے سمے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آدھی رات ہونے کے ساتھ ہی عشاء کی نماز کا سمے سماپت ہو جاتا ہے، اور بھور سمے ہونے تک منشیہ پر کوئی نماز انیواریہ نہیں ہوتی، البتہ بھور ہوتے ہی فجر کی نماز کا سمے ہو جاتا ہے۔
آیت کے انت میں ایک روچک بندو کی اور سنکیت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ فجر کی نماز کی گواہی دی جائے گی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پریجنوں کے کتھنوں کے انوسار رات اور دن دونوں سمے کے فرشتے فجر کی نماز کو دیکھتے ہیں۔ راتری کے فرشتے جاتے سمے اور دن کے فرشتے آتے سمے فجر کی نماز اور اس نماز کو پڑھنے والوں کو دیکھتے ہیں اور وہ اس کی گواہی دیں گے۔
اس آیت سے ہم نے سیکھا کہ دھارمک آدیشوں کا ماندنڈ سوریہ و چندرما جیسی بھوتک باتیں ہیں، تاکہ سبھی لوگ سرلتا سے انہیں سمجھ سکیں۔ پرتی دن کی نمازوں کے سمے کا ماندنڈ بھی سوریودے و سوریاست جیسی باتیں ہیں۔
دھارمک درشٹی سے انیوار کرموں کے لیے سمے نردھارت کیا گیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے پاس لوگوں کی پرگتی ایوم وکاس کے لیے نردھارت کاریکرم ہے اور وہ انہیں انوشاسن سکھاتا ہے۔
آئیے اب سورہ اسراء کی آیت نمبر 79 کی تلاوت سنیں۔
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔
اور رات کا کچھ بھاگ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ جاگتے ہوئے بتائیے کہ یہ آپ کے لیے اترکت دائت تو ہے، निकट है कि आपका पालनहार आपको प्रशंसनीय स्थान तक पहुंचा दे।
पिछली आयत में प्रतिदिन की नमाजों के समय का वर्णन करने के पश्चात ये आयत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संबोधित करते हुए कहती है कि पैगंबर होने के नाते आप पर कुछ अतिरिक्त दायित्व है और वो रात में जाग कर उपासना करना है। आपको रात के एक भाग में जाग कर कुरान मजीद की तिलावत करनी होगी ताकि आप उच्च व प्रशंसनीय स्थान तक पहुंच सकें।
यद्यपि इस आयत में आधी रात के बाद पढ़ी जाने वाली नमाज या नमाज शब का उल्लेख नहीं किया गया है और केवल रात में जागने की बात कही गई है, किंतु पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके परिजनों के कथनों में इसका अर्थ केवल जागना नहीं बल्कि नमाज शब पढ़ना है, जिसमें ईश्वर से पापों को क्षमा किए जाने की प्रार्थना की जाती है।
अलबत्ता नमाज शब पैगंबर इस्लाम के लिए अनिवार्य थी और अन्य लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है, किंतु इसे पढ़ने का बहुत पुण्य है। कुरान मजीद के सूरह मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर जैसे अन्य सूरों में भी नमाज शब के महत्व की ओर संकेत किया गया है। सूरह सज्दा की आयत नंबर 17 में भी ईश्वर ने उन लोगों को जो रातों में उपासना करते हैं और नमाज शब पढ़ते हैं गुप्त पारितोषिक का वचन दिया है जो उनकी आंखों की ठंडक का कारण बनेगा, किंतु किसी को भी उस पारितोषिक के बारे में ज्ञान नहीं है।
पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके परिजनों के कथनों में नमाज शब के अनेक सत्परिणामों का उल्लेख किया गया है, जिनमें शारीरिक स्वास्थ्य, आजीविका में वृद्धि, पापों का क्षमा किया जाना, लोगों के बीच आदर सम्मान इत्यादि उल्लेखनीय है। अलबत्ता नमाज शब पढ़ने के लिए ईश्वरीय सहायता की आवश्यकता है जो हर एक को प्राप्त नहीं होती। हजरत अली अलैहिस्सलाम का कथन है कि दिन में किए गए पापों के कारण मनुष्य आधी रात के बाद पढ़ी जाने वाली नमाज से वंचित हो जाता है।
इस आयत से हमने सीखा कि आधी रात का समय जब सब लोग सो रहे होते हैं ईश्वर से प्रार्थना और उसकी उपासना का सबसे अच्छा समय है।
प्रशंसनीय स्थान तक पहुंचने का मार्ग ईश्वर की उपासना है जिससे मनुष्य को परिपूर्णता प्राप्त होती है।
आइए अब सूरह इसरा की आयत नंबर 80 की तिलावत सुने।
और कहिए कि प्रभुवर मुझे हर काम में भलाई व सच्चाई के साथ प्रविष्ट कर और भलाई व सच्चाई के साथ ही बाहर निकाल और अपनी ओर से मेरे लिए एक सहायक शक्ति भेज दे।
ये आयत एक अत्यंत महत्वपूर्ण इस्लामी आदेश अर्थात सच्चाई और अमानत की ओर संकेत करते हुए कहती है कि हर कार्य का आरंभ व अंत और सभी कार्यक्रमों का मानदंड सच्चाई व भलाई होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ईश्वर भी मनुष्य की सहायता करता है और वो कठिनाइयों को नियंत्रित करके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है।
हर कार्य का आरंभ व अंत सच्चाई व निष्ठा के आधार पर होना चाहिए ताकि उसमें किसी भी प्रकार का दिखावा न हो। कार्य की समाप्ति तक इस प्रकार की पवित्र एवं निष्ठापूर्ण नियत आवश्यक है। संभावित रूप से बहुत से कार्यों का आरंभ तो निष्ठापूर्ण होता है किंतु आगे चलकर या फिर उस कार्य की समाप्ति पर मनुष्य घमंड में ग्रस्त हो जाता है, जिसके चलते उस कार्य की समस्त विभूतियां बर्बाद हो जाती हैं।
इस आयत से हमने सीखा कि हमें अपने विचारों व कर्मों के पवित्र व निष्ठापूर्ण होने तथा दिखावे व मिथ्या से दूर रहने के लिए सदैव ईश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए।
कार्य के अच्छे आरंभ पर बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए बल्कि हमें कार्य के अच्छे अंत के बारे में विचार करना चाहिए ताकि हम बुरे अंजाम में ग्रस्त न हो जाएं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए।
और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम।
ईश्वरीय आतिथ्य।
दोस्तों, रमजान के मुबारक महीने के पांचवें दिन का कार्यक्रम ईश्वरीय आतिथ्य की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मरियम मेहर दादी और सैयद मिसम का सलाम स्वीकार कीजिए।
रमज़ान का पवित्र महीना आत्मनिर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है और इसकी शुरुआत आत्मज्ञान से होती है। पहले इंसान खुद को अच्छी तरह से पहचान ले ताकि खुद में सुधार कर सके और अपना आत्मनिर्माण कर सके, क्योंकि आत्मज्ञान से ही ईश्वर की पहचान होती है। जो कोई ईश्वर को पहचान लेता है वो उसकी ओर बढ़ता है और उसका आचरण और व्यवहार ईश्वर की मर्जी के मुताबिक होता है। ईश्वर भी उसे आध्यात्मिक वास्तविकताओं को समझने का अवसर प्रदान करता है। उसकी मिसाल उस चालक की है जो सड़क पर जितना आगे बढ़ता है नए दृश्य उसके सामने आते जाते हैं। इसी तरह से बंदा जितना ईश्वर की ओर आगे बढ़ता है उसके सामने अधिक रहस्यों से पर्दा उठता है और उतना ही ईश्वर पर उसका विश्वास मजबूत होता है।
आत्मनिर्माण का मतलब यह है कि इंसान अपने अंदर विशेष ध्यान दे और भौतिकता पर ध्यान कम दे और अपने आत्मा का नैतिक गुणों की ओर मार्गदर्शन करे। इसलिए पवित्र रमज़ान इंसान के लिए अपनी हकीकत की ओर पलटने और अपनी मानवीय स्थिति और सार को समझने का एक अवसर है। इसी तरह से लोगों के साथ होने के बावजूद एक क्षण के लिए भी ईश्वर की याद से दूर नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि कुछ लोगों ने खुदा के एक बंदे से कहा, हे शेख, फला व्यक्ति पानी पर चलता है और डूबता भी नहीं है। शेख ने कहा, बहुत आसान काम है क्योंकि मेंढक भी ऐसा करता है। फिर उन्होंने कहा, हम एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं कि जो हवा में उड़ता है। शेख ने जवाब दिया, ये भी एक आसान काम है क्योंकि मक्खी और मच्छर भी ऐसा करते हैं। किसी ने कहा, हे शेख, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो पलक झपकते ही एक शहर से दूसरे शहर चला जाता है। शेख मुस्कुराया और कहा, ये काम दूसरे कामों से आसान है क्योंकि शैतान भी पलक झपकते ही पूरब से पश्चिम चला जाता है। ऐसे कामों का कोई महत्व नहीं है। उसके बाद शेख ने खड़े होकर कहा, आदमी वो होता है जो अपने साथियों के बीच उठता बैठता है और खाता पीता है और बाजार में अपने साथियों के बीच व्यापार करता है, लोगों के साथ जीवन व्यतीत करता है और एक पल के लिए भी ईश्वर को नहीं भूलता है।
रोजा उन लोगों पर वाजिब है जिनमें रोजा रखने की शर्तें पाई जाती हैं, जो इस प्रकार हैं: वयस्क होना, समझदार होना, इसलिए कि दीवाना इंसान रोज़ा नहीं रख सकता, रोज़ा रखने की ताकत का होना, क्योंकि मरीज और बूढ़े कमज़ोरी की वजह से रोज़ा नहीं रख सकते, होश में होना, सफ़र में नहीं होना, महावारी का नहीं आना, स्वास्थ्य के लिए रोज़े का हानिकारक नहीं होना और सामान्य से अधिक कठिनाई का कारण नहीं बनना।
दोस्तों, इस बीच रोज़ा वाजिब होने की शर्तों के कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कमज़ोरी की वजह से इंसान रोज़ा नहीं छोड़ सकता। हाँ, अगर इतनी कमज़ोरी है कि जो असहनीय है तो रोज़ा छोड़ा जा सकता है। इसी तरह से उसे अगर नुकसान पहुंचने का डर हो, इसलिए जिन लड़कियों के वयस्क होने की उम्र हो जाती है अर्थात इस्लामी कैलेंडर के अनुसार 9 साल, तो उन पर रोज़ा वाजिब हो जाता है और कठिनाई या शारीरिक कमजोरी के कारण उसका छोड़ना सही नहीं है। लेकिन अगर हानिकारक हो और भूख व प्यास का सहन करना बहुत मुश्किल हो तो रोज़ा छोड़ा जा सकता है।
इफ्तार के वक्त दुआ पढ़ने का काफ़ी महत्व है। افطار کا سمے دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے بہترین سمے ہے. حضرت علی افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے: ہے ایشور، ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، ہماری اس عبادت کو سویکار کر، نیسندہ تو گیانی اور سننے والا ہے. افطار کے وقت سورہ قدر کی تلاوت کی سفارش کی گئی ہے. افطار کے وقت دان کرنا، چاہے کچھ کھجوریں یا شربت ہی کیوں نہ ہو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: رمضان کے مہینے میں جو کوئی کسی دوسرے کو کھانا کھلائے گا، ایشور اسے 30 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب دے گا اور اس کی ایک دعا سویکار کرے گا.
دوستو، ایک دن پیغمبر اسلام نے حضرت علی سے فرمایا: ابو الحسن، رمضان کا مہینہ نکٹ ہے، افطار سے پہلے دعا کرنا. جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ ہے محمد، جو کوئی رمضان کے مہینے میں افطار سے پہلے رمضان کی وشیش دعا پڑھے گا، ایشور اس کی دعا، نماز، روزہ اور 10 دعاؤں کو سویکار کرے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کے دکھوں کو دور کر دے گا، اس کی کٹھنائیوں کا سمادھان کر دے گا، اس کی ضرورتوں کو پورا کر دے گا، اسے اس کے لکش تک پہنچا دے گا، اس کے کاریوں کو اپنے دوتوں کے کاریوں کے سمان کر دے گا. پرلے کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند سا چمک رہا ہوگا.
اس دعا کا انواد یہ ہے: ہے ایشور، ہے اچھ پرکاش کے پالنہار، ہے اونچے استھان کے پالنہار، اور ہے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمدر، مہان شما یاشنا اور اجے پرکاش کے مالک، ہے توراہ، بائبل، زبور اور فرقان کے پالنہار، آسمانوں میں ہر چیز کا تو ہی مالک ہے اور تو ہی زمین کی ہر چیز کا سوامی ہے، اور تیرے علاوہ پرتھوی اور آکاش میں کوئی ایشور نہیں ہے. جو کچھ بھی زمین آسمان میں ہے، تیرا اس پر ورچسو ہے. یہاں تیرے سوا کوئی دوسرا سوامی نہیں ہے. جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، تو اس کا مالک اور شاسک ہے، اور تیرے علاوہ ان میں کوئی سوامی اور شاسک نہیں ہے. میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے مہان نام کا واسطہ دے کر، تیرے پرکاش کا واسطہ دے کر، کہ جس سے ہر چیز اجول ہے، اور تیری بادشاہت کے واسطے کی جو پراچین ہے، ہے وہ کی جو زندہ ہے اور ہر چیز کا جیون اس کے سہارے ہے. میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے اس نام کے واسطے کہ جس کے دوارا ہر چیز چمکتی ہے، اور اس نام کے واسطے جس نے آسمان اور زمین کو پرکاش میں بنا دیا، اور اس نام کے واسطے کہ جس کے دوارا اتیت اور بھوشیہ کے لوگوں کا سدھار ہوا اور وہ یوگے بنے.
ہے وہ کی جو سمست جیوتوں سے پہلے جیوت تھا اور سمست جیوتوں کے بعد بھی زندہ رہے گا، اور ہے ایسے زندہ کی جو تیرے علاوہ کوئی پالنہار نہیں ہے، محمد اور ان کے پریجنوں کا گنگان ہو. میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے معاملوں میں میرے لیے آسانی کر دے، اور مجھے محمد اور ان کے پریجنوں کے دھرم، مارگ درشن اور پرمپرا پر استھیر رکھ. ان پر خدا کو سلام ہو. مجھے استھیر رکھ اور میرے کاریوں کو سویکار کر، جو کچھ تو نے اپنے خاص بندوں کو پردان کیا ہے، مجھے بھی پردان کر، اس لیے کہ میں تجھ پر وشواس رکھتا ہوں اور میں نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے، اور میں تیرے سامنے گڑ گڑا رہا ہوں جبکہ میرا بھاگیہ تیرے ہاتھوں میں ہے اور میں تیرے پاس آ رہا ہوں. میرے اور میرے پریوار اور بچوں کے لیے بھلائی ایکترت کر اور برائیوں کو دور کر دے. تو ہی سب سے دیالو ہے جس نے بنا کسی نمونے کے आकाश और पृथ्वी की रचना की और जिसे चाहता है उसे भलाई प्रदान करता है और जिससे चाहता है दूर करता है। इसलिए मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर तेरी भलाई और दया की आशा के साथ, हे सबसे बड़े दयालु। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
रमदान तजल्ला वबतसम तुबल العبد اذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد اذا اغتنم ارضى مولاه بما التزم تكريم النفس بتقواها رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان مجال الصلوات تكريم النفس بتقواها رمضان تجلى سماء طوبى للعبد اذا اغتنم
رمضان. یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتاؤ، ہمارے پریاس آپ کو کیسے لگے اس بارے میں آپ اپنے وچار ہمیں لکھ بھیجیے۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے hindi@wsiribir۔ ہماری ویب سائٹ ہے partstoday.com/hi۔ تو دوستوں، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کی یہ سبھا اب یہیں پر سمپن ہوتی ہے۔ آپ سبھی سے ہم انومتی چاہتے ہیں۔ شبھ راتری، خدا حافظ۔